तारणम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौव पावफणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आठ मूल गुणों का पालन करना यह जैन कुलाचार कहलाता है। छठे पाठ के अंदर केवल श्रावकों की चर्चा है। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं? पाक्षिक श्रावक के आठ मूल गुणों में सप्त व्यसनों का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, अंतर्भाव को प्राप्त होते हैं। सप्त व्यसन और पंच उदंबर फल अनुवृत्त के अंदर ही इनका शामिल होना हो जाता है। आठ मूल गुणों का पालन करना ये जैन कुलाचार कहलाता है। कुल परंपरा में जन्म लेने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि भले ही न हो, क्योंकि सम्यक तो आठ साल के उपरांत उत्पन्न होता है, पर कुल परंपरा से उसे शाकाहारी रहना परमावश्यक। मध्य मांस मधु इससे दूर रहता है और पंच अनुव्रतों का पालन वंश परंपरा से ही वह करता है। इसलिए इन आठ मूल गुणों को जैन कुलाचार भी कह सकते हैं, जो कि ये मानवीयता का लक्षण है। आठ मूल गुण जिस व्यक्ति के जीवन में हैं, वहीं मानवीयता होती है। मानव बनकर जन्म लेना और शाकाहारी रहना, ये तो उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, रहना ही चाहिए ना। रहना ही चाहिए, प्रकृति है उसका शाकाहारी रहना। मांसाहार जो करता है यह उसकी प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। मनुष्य के दांत शाकाहारी की तरह है, बिल्ली के दांत, शेर के दांत, सिंह के दांत ये मांसाहार की तरह। हमारे दांत ही बताते हैं कि हम मूलतः शाकाहारी, और उन प्राणियों के दांत बताते हैं कि मूलतः वे मांसाहारी। उनके कुल में वे आठ मूल गुण पालन नहीं कर सकते, शिव है, बिल्ली है, मांसाहारी प्राणी, और जो मांसाहारी प्राणी है नहीं है उनके दांत देखो एकदम अलग, मनुष्य जैसे दांत, जैसे भैंस, गाय, बंदर, इन सब के दांत मांसाहारी की तरह नहीं है। पक्षियों में जो मांसाहारी होते हैं उनके चोंच अलग रहते हैं और शाकाहारी की चोंच अलग रहती है। मोर है शाकाहारी कहें क्या मांसाहारी, मोर दोनों हैं, दोनों खा लेता है, सेंग दाना भी खाता है और कीड़ा मिल जाए तो कीड़े को भी खा लेता है। लेकिन तोता, पोपट, पेरो खाता है, अंगूर खाता है, केला खाता है, मूंगफली खाता है, पोपट है वो कहता है मुझे मांसाहार नहीं पटता, शाकाहार ही पटता है उसको, पोपट शाकाहारी है, कबूतर शाकाहारी है, चिमनी अपने बच्चों को कीड़े चुन चुन करके लाता है वो चिमनी, नाम चिमनी है लेकिन प्रकाश में अंधकार है। ये सभी कुछ पक्षी कुछ प्राणी शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, और उनके शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो मांसाहारी की संरचना शरीर की अलग है और मांसाहारी की शरीर की संरचना अलग दिखाई देती। तो मनुष्य जो है मनुष्य कुल से ही शाकाहारी रहना चाहिए क्योंकि इसकी प्रकृति शाकाहारी, इसलिए हमारे वंश परंपरा से हमें शाकाहारी होना आवश्यक है। मांसाहारी होना या रहना ये जीवन में अपराध है, इसलिए उसको मनुष्य नहीं कह सकते, उसमें मनुष्यता मानवता नहीं पाई जा सकती यदि मांसाहारी है तो। दानवता मानवता नहीं, जैन कुलाचार इसे कहते हैं, आठ मूल गुण जैन कुलाचार कहलाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो जैन लोग हैं वही इसका पालन करते हैं, ये आठ मूल गुण तो मानवीय आचार है, समस्त मनुष्य मात्र के लिए आठ मूल गुण मानवीयता की सुरक्षा के मूल हैं, मानवीयता के सुरक्षा के मूल हैं। ये मनुष्य होकर के मनुष्य गति में जन्म ले हैं और मनुष्य की तरह हम नहीं रहते हैं तो मानवीयता नहीं है, इसलिए इन आठ मूल गुणों को मानव मूल व्रत कहते कहा है। रत्नकरणिक सावकाचार ग्रंथ का जो एक मराठी भाषा में अनुवादित हुआ है मानव धर्म कह करके आप लोगों के पास है, उसका नाम जैन धर्म क्यों नहीं, उस पुस्तक का नाम हाँ जैन धर्म मानव धर्म है, पहले मानव धर्म है फिर बाद में जैन धर्म है। मानव धर्म का तात्पर्य आठ मूल गुण और जैन धर्म का तात्पर्य आठ मूल गुण के साथ साथ सम्यक दर्शन धारण करना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी वर्ग के लिए सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं समझना। सम्यक दर्शन भी प्राणी मात्र के लिए है, किंतु कोई भी मानव कोई भी जीव यदि वह जैनत्व पाना चाहता है तो केवल आठ मूल गुण से नहीं चलेगा, सम्यक दर्शन भी आवश्यक है। तो आठ मूल गुण हो गए मानव धर्म, और यदि वही मानव सम्यक दर्शन भी धारण कर लेता है तो जैनत्व आ जाता है उसके पास। उसके पास जैनत्व आ जाता है। आठ मूल गुण ग्रहण करने मात्र से जैनत्व नहीं आएगा। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना जैनत्व नहीं आएगा। भाव जैन किसको कहेंगे? सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला, आठ मूल गुण तो पहले से ही है लेकिन सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला भाव जैन। किंतु द्रव्य जैन किसको कहें? सिर्फ आठ मूल गुण जिसके पास हों। तो ये आठ मूल गुण मात्र छोटे से लेकर बड़े तक, यानी आठ साल के जो नहीं हैं, उनसे लेकर बड़ों तक और मानव मात्र तक ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए उस ग्रंथ का नाम मानव धर्म का है। एक मानव आदर्श मानव बनने के लिए, मानव पर्याय को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो कहा आठ मूल गुणों का पालन पहले करना। ये तो आदर्श मानवीयता हो गई। आठ मूल गुण अगर पालन कर रहे हैं तो आदर्श मानवीयता जीवन में आ गई। किंतु एक आदर्श धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। आप धर्म के मार्ग पर कदम रखना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन चाहिए। अब मनुष्य कोई भी हो, मनुष्य मात्र के लिए भी यही नियम है कि आप एक धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन की ओर विचार करो। धर्मात्मा नहीं बनना चाहते हैं, एक आदर्श मानव ही केवल हम बनना चाहते हैं, तो फिर आठ मूल गुणों का पालन करो। आदर्श मानव बनने के लिए आठ मूल गुण चाहिए। एक आदर्श मानव बनने के बाद धर्मात्मा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो फिर सम्यक दर्शन चाहिए। और दोनों ही नहीं बनना चाहते हैं तो दानव बन करके भी जीवन जिया जा सकता है, जीवन निकलेगा। दानव बन करके जिएंगे तो भी मरेंगे, मानव बन करके जिएंगे तो भी मरेंगे। अतः अच्छा तो यही है मनुष्य मानव बन करके मरे और संसार सागर से तरे। ये आठ मूल गुण मानव मात्र के लिए है। आर्यखंड में पैदा होते ही ये चाहिए आठ मूल गुण। म्लेच्छखंड में पैदा हुए हैं तो इनको पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि म्लेच्छों का आचार विचार आठ मूल गुणों से रहित ही होता है। आठ मूल गुण आर्य सभ्यता है, आर्य संस्कृति है, आर्यों का मूल है ये। हाँ, बना यहाँ ला करके उनको, वहाँ नहीं बन सकता। हाँ, मृच्छखंड में इन आठ मूल गुणों को संस्कारित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बहुलता वही वही है और वहाँ रहते हुए ये संस्कार आ नहीं सकते। और यदि आने लग जाए तो गुणस्थान वहाँ कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। लेकिन पांच मृच्छ खंड में एक ही गुणस्थान बताया भगवान ने। द्रव्य जैन हो तो भी एक ही गुणस्थान, लेकिन द्रव्य जैन तो भी उनमें नहीं आ सकता, क्योंकि उनके आचार विचारों में ये आठ मूल गुण है ही नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं। मान के चले ये आठ मूल गुण के लायक विचार उनमें आ भी जाए तो परमार्थ के दृष्टिकोण से नहीं आते। परमार्थ ने सम्यक्तु, सम्यक्तु नहीं आ सकता। सम्यक्तु एक धर्म है। आठ मूल गुण ये धर्म के सहायक कंपाउंड है, ये मानव सभ्यता है आठ मूल गुण। पर सम्यक दर्शन मानव सभ्यता नहीं, मानव महानता है। भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए जाता है, वहां से 60,000 कन्याओं को ले आता है। उनसे पैदा हुई संतान और वे आरिका दीक्षा भी लेती हैं और संस्कारित भी होते हैं। उनका गुणस्थान चार या पांच भी हो जाता है और उनसे उत्पन्न संतान को 14 गुणस्थान प्रकट हो जाते हैं, यानी मोक्ष भी जाते हैं। नहीं नहीं, वहां से हुआ इसका तात्पर्य ये नहीं कि यहाँ से वहां जाते, वहां से यहाँ आते थे, वहां से यहाँ आ गए तो यहीं रहते थे। हाँ, यहीं रहते थे और यहीं उनकी संतान उत्पन्न हो गई और उनके लिए आर्य संस्कृति की सभ्यता के संस्कार उनमें आ गए। उन्होंने महाव्रत धारण कर लिया, सम्यक दर्शन धारण कर लिया, अरहंत बन गए, मोक्ष भी गए। ये भरत चक्रवर्ती के 923 बच्चे जो मोक्ष गए, सुनाया था एक बार, वो सभी उसमें कई तो मृच्छखंड के होंगे। रोटी बेटी व्यवहार जो होता है ना, वो किसके साथ होता है? जो आठ मूल गुणों का पालन भी करे। पहले तो मानवीयता चाहिए, नंतर धर्म भी चाहिए उनकी वंश परंपरा में, क्योंकि अपने को केवल मानव बनकर के ही नहीं जीना है, एक आदर्श मानव बनकर के ही नहीं जीना है, एक धर्मात्मा बनकर के भी जीना है। धर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण प्राण है। शरीर के प्राण, इनको ठीक रखने के लिए आठ मूल गुण चाहिए। खाना पीना, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये संस्कृति सिखाते हैं आठ मूल गुण। आठ मूल गुण हमें शारीरिक परिस्थिति को ठीक बना देते हैं, पर सम्यक दर्शन हमें आत्मिक परिस्थिति को ठीक बना देता है। आत्मा बीमार है, उसको स्वस्थ बनाने के लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन धर्म है और धर्म की उत्पत्ति कहाँ होती है? आत्मा में। तो आत्मा में धर्म की उत्पत्ति होगी तो वह धर्म सम्यक तो धर्म आत्मा के रोग को ठीक करेगा। और आत्मा का रोग क्या है? मिथ्यात्व। उस रोग की औषधि क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन रूपी औषधि से हम आत्मा के मिथ्यात्व रूपी रोग को हटाते हैं, परंतु आठ मूल गुणों की औषधि से शरीर में यदि रोग हो या नहीं भी हो, रोग ही न आ जाए, इस प्रकार रखने के लिए हमें आठ मूल गुण चाहिए। जैसे हम अहिंसक हो गए तो क्या हो गए? मांस, मध्य मांस मधु का त्याग किया, इसी का नाम अहिंसक। बाह्य रूप से अहिंसक हो गए। अब जो मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, उसका शरीर क्या बिगड़ता है? उसका ही अच्छा रहता है। हाँ, राग द्वेष होता है, उससे आत्मा भी राग द्वेष होकर के बीमार पड़ जाती है। राग द्वेष करना बीमारी है आत्मा की, उसमें आत्मा भी बीमार हो जाती है और शरीर भी बीमार बन जाता है। शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। मांस आठ घंटे में पचता है और शाकाहार चार घंटे में पचता है, डबल फर्क है, बेचैन होता है। जैसा एक सांप मेंढक निगलने के बाद बेसुध हो जाता है, वो सुस्त हो जाता, पड़ जाता है, उस प्रकार ये आठ मूल गुण हमारी शारीरिक स्वस्थता को सुरक्षित रखते हैं। आठ मूल गुणों से हमारा शरीर बिल्कुल धर्म धारण करने के योग्य बन जाता है। हाँ, हमारा शरीर धर्म को धारण करने योग्य बनता है। जो मांस खाता है वो धर्म धारण करने के लायक रहता है? पहला तो शरीर चाहिए, यहाँ कैसा चाहिए? निरोग चाहिए। शराब पीने वाला और मांस खाने वाला सुस्त रहेगा कि नहीं? तो सुस्त व्यक्ति क्या धर्म धारण कर सकेगा? नहीं। सुस्त व्यक्ति आठ मूल गुणों को धारण करे, इसलिए कहा है। वो सुस्तता न आए, सुस्तता आकर के हमारा शरीर रोगी न बने, इसके लिए आठ मूल गुण चाहिए और ये संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा। जीवन पर्यंत हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, शाकाहार से रहेंगे, ये संकल्प आठ मूल गुण कहलाता है। और ये संकल्प जगने के बाद वो धर्म धारण करने के योग्य माना जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सम्यक दर्शन आठ मूल गुणों को धारण किए बिना उसको धारण करना संभव नहीं, क्योंकि शरीर ठीक चाहिए पहले। शरीर ठीक नहीं है तो सम्यक दर्शन आएगा ही नहीं। अच्छे कंपनी के माल को बाहर भेजना हो तो पैकिंग तो चाहिए। माल दूर जाना है, विदेश तक पहुंचेगा, पैकिंग जितना अच्छा रहेगा उतना माल भी सुरक्षित पहुंचेगा। सम्यक दर्शन माल है और आठ मूल गुण पैकिंग है, और शरीर जो है यह आठ मूल गुणों से रहित है तो टूटा फूटा पैकिंग है, ये इससे माल नहीं जाएगा। इसलिए आठ मूल गुणों को अपने घर में क्या बनाना है? घर का मूल, मानव संस्कृति का मूल, आर्यखंड का मूल, जैन बनने से पहले जैनत्व का मूल, इसको बना के इस भूमिका को तैयार रखना पड़ेगा। आठ मूल की मूल गुण की भूमिका अगर घर में सब में तैयार है तो सम्यक दर्शन आ जाएगा, उसके बिना नहीं आएगा। तीर्थंकरों की माता पिता जिस कुल में जन्मती हैं, उस कुल में मांसाहार था क्या? कोई भी राजा उसके माता पिता कहो उनके कुल में, पूर्व कुल में, अब जहां वो आती हैं उस कुल में कहो, मांसाहारी थे क्या? नहीं थे। ये जो आठ मूल गुण वाली परंपरा है ये सुरक्षित था, यही सुरक्षित नहीं था, सम्यक दृष्टि भी थे उनके माता पिता। तीर्थंकर के माँ के पिता और माँ ये दोनों वहां सम्यक दृष्टि थे क्या? नहीं। तो सम्यक दृष्टि थे तो फिर आठ मूल गुण तो होंगे ही, होना ही चाहिए। अब वो जहां विवाह हुआ वहां पर सम्यक दृष्टि थे क्या? नहीं। उस कुल में भी सम्यक दृष्टि थे, तो सम्यक दृष्टि थी तो फिर आठ मूल गुण थे क्या? नहीं, आठ मूल गुण थे ही। विवाह करते समय पैसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा सोचो अब ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। पैसा को देखोगे तो पैसा देखने वाला केवल शारीरिक दुख सुख देखता है। शारीरिक सुख हमारे जीवन में कुछ कम रहे कोई बात नहीं, लेकिन वहां धर्म पल सकता है कि नहीं ये देखना चाहिए। आज लोग कितने अंधे हैं, शादी से पहले अपनी लड़की को देने से पहले माता पिता कितने अंधे हैं देखो, ये सोचते हैं कि वो क्या काम करता है, कितना इनकम है, कितना व्यवहार है, ये व्यसनी है क्या नहीं ये नहीं देखते, धर्मात्मा है क्या नहीं ये नहीं देखते। सबसे पहला जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, जो लास्ट में देखा जाता है उसको पहला देखते और उसी को महत्व देते। बहुत गलत है ये। पहला क्या देखना, क्या देखना चाहिए कि वो कुल की परंपरा में कोई मांसाहारी तो नहीं, सबसे पहला ये देखो, शराबी तो नहीं, पहला ये देखो। मांसाहारी शराबी निकला तो तुम्हारा तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा वो। पैसा खूब है तो पैसा करोड़ों का भी हो बर्बाद हो जाएगा वो। पहला शाकाहारी है क्या नहीं ये देखो, फिर देखना कि धर्म का भी पालन करते है क्या नहीं, सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, क्या मिथ्यात्व को पालते हैं, इनको विवेक है क्या नहीं, असयमी संयमी का, परिग्रही निच परिग्रही का, नमोकार मंत्र का चिंतन है क्या नहीं ये देखो। ये धर्म के दृष्टिकोण से विचार करना हुआ। अकस्मात मिथ्या तो हो भी चल जाएगा, सम्यक्त के संस्कार आ सकते हैं उसके यहाँ, किंतु शाकाहार होना पहले आवश्यक है। सम्यक दर्शन को बाद में देखा जाएगा। चेलना रानी ने ये नहीं देखा, देखा था लेकिन महत्व नहीं दिया, वो तो मिथ्या दृष्टि है, उसके यहाँ कैसे हम शादी करेंगे। वो कुगुरुओं को मानता है और कल के दिन ला करके हमारे सामने रखेगा तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी, कौन करेगा। बड़ी समस्या थी चेलना रानी के सामने। और इस शर्त के साथ देखो तुम्हारे घर में सब सब ठीक है, तुम शाकाहारी हैं, सब हैं सब हैं, ये सबसे ज्यादा पसंद है अपने को। शाकाहारी होने से हमको अच्छा लग रहा है, परंतु किन गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं आप? आप असली धर्म के संबंध में विचार क्यों नहीं करते? दोष सहित व्यक्तित्व गुरु होता है क्या? गुण सहित व्यक्तित्व गुरु होता है। तो गुण चाहिए, संयम चाहिए, असंयम ही नहीं चलेगा यहाँ। तो इसको कैसे करोगे, पूछा उनने शादी से पहले ही। तो उस तरफ से कहा गया, शादी के बाद तो हम सब छोड़ेंगे। ऐसा ही कहा उन्होंने, श्रेणिक राजा ने ऐसा ही कहा, शादी के बाद मैं सब छोड़ूंगा। ऐसा कहा और शादी के बाद जो है बड़ा परेशान हुआ परिवार, दोनों ही परेशानी में पड़ गए। उनको छोड़ने के भाव नहीं हो रहे हैं और इनको छुड़ाए बिना चैन नहीं पड़ रहा है। अब ये कह रही है कि छुड़ा करके ही रहूंगी, पहले तो वादा हुआ है, पहला वादा हुआ है, और नहीं भी हुआ है तो स्त्री को कुशल रहना चाहिए, चलना रानी जैसे। किस तरह से इसको सम्यक्त्व के पथ पर लाया जाए, किस प्रकार इसके धर्म, इसके आत्मा में धर्म के संस्कार भरा जाए, ये कुशलता स्त्री में होना चाहिए। डरपोक स्त्री अच्छी स्त्री नहीं मानी जाती कि वो परिवार से ही डर रही है। जो स्त्री धर्मात्मा होती है, जिसके पास सम्यक्त्व होता है, स्वाध्यायशील होती है, ऑटोमेटिक उसके जीवन में धैर्य आता है, साहस आता है, तो सबको धर्मात्मा बना देगी। बच्चा पैदा होते ही उसको नभा देगी धर्म की तरफ, गर्दन पकड़कर जय कर, अब इसी को करना है, ऐसा ही जाना। स्त्री में जो शक्ति है, स्त्री में जो पात्रता है, स्त्री जो व्यापक काम कर सकती है परिवार के अंदर, वो पुरुष नहीं कर सकता। मानव सभ्यता का मूल यदि अष्टमूल गुण है, तो परिवार का मूल स्त्री है। परिवार का मुख्य मूल स्त्री है। एक स्त्री अगर धर्मात्मा है और आठ मूल गुणों को धारण करने वाली है, तो पूरा संस्कार देने का सावधानी रखती कि हमारा कुल में विकृति ना आ जाए, कुल बिगड़ न जाए। स्त्री विचार करती है, हमारा बच्चा क्या खा रहा है, कहाँ से ला रहा है, वो शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ध्यान रखती पूरी, पति का ध्यान रखती, बच्चों का ध्यान रखती, सबका ध्यान रखती है, क्योंकि उसको पता है, स्वाध्याय करती है, क्योंकि उसको पता है आठ मूल गुण क्या है, क्योंकि उसको पता है सम्यक दर्शन क्या है, क्या उपकार करते हैं ये सम्यक दर्शन, आठ मूल गुण आदि अपने जीवन के ऊपर क्या उपकार करते हैं, ये उसको पता है। उसकी महिमा जिसके जीवन में प्रकट हो गई है ना, वो सारे परिवार को उस जैसा बना देगी, और इसी को कहते हैं उच्च कुल, इसी को कहते हैं उच्च। जिस स्त्री के जीवन में आठ मूल गुण और सम्यक दर्शन है, वो उच्च कुलीन स्त्री है, और वह घर उच्च कुलीन घर है, और वह कुल उच्च कुल है। जाति यानी स्त्री से जाति चलती है, पिता से पुरुष से कुल चलता है। तो जाति अगर पवित्र हो गई, जाति अगर पवित्र है, तो कुल तो पवित्र बनेगा ही, जाति को छोड़कर कुल है ही नहीं, स्त्री को छोड़कर पुरुष हो ही नहीं सकता, स्त्री से ही जन्म है, स्त्री का सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा और इसलिए स्त्री को अपनी गरिमा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम क्या हैं और पुरुष क्या है। अपनी महिमा को भूलना नहीं चाहिए। आप लोग बहुत कुछ हैं, तीर्थंकरों को भी जन्म दिया है, मोक्ष भेजा है तुम लोगों ने, राजा श्रेणी को तीर्थंकर बनाने का अवसर प्राप्त करा दिया। ये कृपा किसकी? एक स्त्री की। जाति में बहुत बड़ी शक्ति है, कुल में नहीं, पर जाति में ये शक्ति नहीं किसी को, किसी के कुल को पवित्र करके मोक्ष तो भेज सकती है, तीर्थंकर भी बना सकती है, ऐसा सहयोग, ऐसा निमित्त, ऐसा कार्य कर सकती है, सबका ऑपरेशन करती है, लेकिन खुद मोक्ष नहीं जा सकती, खुद मोक्ष नहीं जा सकती, क्योंकि पर्याय पराधीन है। ये पर्याय की पराधीनता के कारण से उसे पश्चाताप होता है और इसीलिए स्त्री पर्याय के छेद के संबंध में विचार आने लगते हैं, हे भगवान मुझे स्त्री पर्याय से कब मुक्ति मिले। परिवार में स्त्री बेस है, घर का बेस है, स्त्री अगर मजबूत हो तो हमारा घर बहुत अच्छा चलेगा, और स्त्री लड़खड़ाती हो तो सारा धराशायी हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, जाति अगर नष्ट हो गई तो कुल तो रहेगा ही नहीं, समाप्त। कुल से पहले जाति का महत्व है, जाति बहुत मजबूत चाहिए, पवित्र चाहिए, और इसलिए हम कहते हैं स्त्री पर्याय में स्वाध्याय सबसे ज्यादा चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने जिस मानव धर्म का उपदेश दिया है उस मानव धर्म की पुस्तक को बार बार पढ़ करके अपना जीवन बना लो और फिर अपने बच्चों पर वही संस्कार डालो तो ये उठेगा, धर्म घर में धर्म भी उठेगा, घर में आदर्श मानव धर्म भी उठेगा। आठ मूल गुण मानव धर्म है और सम्यक दर्शन मानव धर्म की महानता का प्रतीक है। मानव धर्म में महानता को लाने से पहले हमारे जीवन में मानव धर्म जगाना है, यानी आठ मूल गुणों को जगाना। तो कुछ इसमें भेद बन सकते हैं, देखो तीन चार भेद बनते हैं। कैसे भेद बनते हैं तो देखें, जैन कुलाचार रहित, देखिए जैन कुलाचार रहित मिथ्या दृष्टि गृहस्थ, यानी कौन? मैं उसमें नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ, आप ढूंढ रहे हैं, मैं उसमें नहीं है। पहला भेद, मैं अपने भेद यहाँ नोट करके लाया हूँ, पहला भेद लिख सकते आप, पहला भेद है जैन कुलाचार रहित मिथ्या दृष्टि गृहस्थ, ये पहला भेद, जैन कुलाचार रहित मिथ्या दृष्टि गृहस्थ। दूसरा भेद बनेगा ज, जैन कुलाचार सहित जैन कुलाचार सहित मिथ्या दृष्टि गृहस्थ तीसरा भेद बनेगा जैन कुलाचार सहित अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ चौथा भेद बनेगा जैन कुलाचार सहित जैन कुलाचार सहित अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक पाक्षिक श्रावक ये समाज में चार प्रकार की विविधता पाई जाती है यानी चार प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। पहले कौन? प्रथम नंबर में जैन कुलाचार सहित रहित मिथ्या दृष्टि ग्रस्त। जैन कुलाचार कौन सा? आठ मूल गुण वाला। आठ मूल गुण भी नहीं है और फिर क्या है वो? मिथ्या दृष्टि ग्रस्त, मिथ्या दृष्टि भी है। तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं कि शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और मिथ्या दृष्टि है और फिर भी नाम से जैन है, तो ये शून्य है। पहले नंबर वाला ये जीरो रहता है। दूसरे नंबर में कौन है? जैन कुलाचार सहित मिथ्या दृष्टि गृहस्थ। ऐसे भी रहते हैं कि नहीं जो रात्रि भोजन नहीं करते और मध्यमांस नहीं खाते, आठ मूल गुण देव दर्शन दान सब करते हैं, सब करते हैं, सब करते रहते हैं, लेकिन सम्यक तो नहीं है। ऐसे भी रहते हैं कि नहीं? तो ये दूसरे कैटेगरी के हैं। अब इनमें क्या कमी है? केवल सम्यक दर्शन को लाना। पहले वाले में क्या कमी है? उसको सबको ही लाना है, कुलाचार को भी लाना है और धर्म को भी लाना है। तीसरी कैटेगरी में जैन कुलाचार सहित अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ। अब ये गृहस्थ ही संज्ञा है, गृहस्थ ही नाम है इसको। देखो जैन कुलाचार सहित यानी सहित है, अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ, सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि है, इसलिए गृहस्थ। इसलिए कहा सम्यक दृष्टि भी है और आठ मूल गुण भी है, तो आपका कहना ये हो सकता है कि पाक्षिक श्रावक कहें? पाक्षिक श्रावक नहीं है, क्योंकि आठ मूल गुणों का कुल परंपरा से तो पालन करता है पर संकल्प पूर्वक नहीं है। आठ मूल गुणों का कुल परंपरा से पालन कर रहा है, स्वाभाविक रूप से उसके यहाँ ये सब आठ मूल गुणों के संस्कार हैं, परंतु संकल्प लेकर के नहीं कर रहा है, नियम लेके नहीं कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि नहीं, रात को नहीं खाते लेकिन नियम भी नहीं लिया है, हाँ? कोई मांस नहीं खाते लेकिन नियम भी नहीं है। आपने कब त्याग किया है मांस का? नहीं किया है। नहीं खाते नहीं खाते, नियम भी नहीं है, ऐसे रहते कि नहीं? इसलिए गृहस्थ संज्ञा आएगी उसको, उनको गृहस्थ ही कहेंगे। जब तक संकल्प की कोटि में नहीं आएगा तब तक वो श्रावक की कोटि में नहीं आएगा। संकल्प लेने के बाद ही श्रावक, संकल्प नहीं लिया है और फिर सब कुछ करता है तो गृहस्थ सम्यक तो भी कर रहा है और आठ मूल गुणों का पालन भी कर रहा है, लेकिन संकल्प पूर्वक नहीं कर रहा है तो गृहस्थ की कोटि में आएगा, लेकिन रहेगा गुणस्थान चौथा। यानी चौथे गुणस्थान में दो प्रकार के लोग रहते हैं, गृहस्थ भी रहते हैं और श्रावक भी रहते हैं। जो संकल्प वाले हैं उनको तो कहेंगे श्रावक, और जो संकल्प रहित हैं उनको कहेंगे अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ। ये चार भेद बहुत मुख्य हैं, चिंतन के लायक हैं, नोट करके लाए हैं ताजा ताजा। हम भी कुछ साझे भजी वगैरह बना के लाते हैं, फिर काद में यहाँ खिलाते हैं। आज क्या देना ताजा, तो कुछ न कुछ अपना ताजा, कुछ न एटम सीख एटम बना रहता है। हाँ, आप लोग बनाते हैं तो हमको भी बनाना पड़ता है ना। इनके घर में अब जब जाते हैं कोई लड्डू भी ला रहा है, कोई गुलाब जामुन, महाराज थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा आज नया बना है, तो हमको भी उस समय लगता है कि ये ऐसा करते हैं, हमको भी क्यों नहीं करना चाहिए, नई आइटम हमको भी बनाना चाहिए, तो हम रोज बना के लाते, ध्यान में रहता है। आप लोगों को देख करके हमने सीखा है, हमारा भी जरा आज का नया आइटम। चौथा गुणस्थान, चौथे नंबर में जैन कुलाचार सहित अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक, ये त्याग संकल्प के पक्ष में आ गया। संकल्प के पक्ष में आने के बाद पाक्षिक, संकल्प के पक्ष में नहीं आया है तो पाक्षिक नहीं है, गुणस्थान चौथा दोनों का। लेकिन इनमें कौन श्रेष्ठ है, दोनों एक ही गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में। अब पाक्षिक श्रावक क्योंकि वो संकल्प वाला है और ये संकल्प रहित है, दोनों में उतना ही अंतर है जैसे कि दो करोड़पति हैं, एक व्यक्ति के करोड़ रुपए बैंक में है और एक व्यक्ति के करोड़ रुपए घर में ही हैं। ब्याज किसको आएगा, ये वो सुरक्षित हैं। संकल्प वाला संकल्प करता है तो उसका फल, संकल्प का फल भी है, उन आठ मूल गुणों का फल प्रारंभ होता है मिलना। पुण्य जो बंधता है संकल्प के बिना नहीं बंधता। आप रात को नहीं खाते ठीक है, लेकिन संकल्प भी तो नहीं, पुण्य नहीं बंधेगा। घर में रखे हुए पैसे के समान है वो व्रत, वो त्याग घर में रखे हुए पैसे के समान है। अगर वो संकल्प ले ले तो ब्याज शुरू होता है, पुण्य बंधना शुरू होता है, पैसा सुरक्षित रहता है। हाँ, डर भी रहता है, और वो बैंक में है तो सुरक्षित है, घर में है तो कोई उठा के ले जा सकता है, चोरी हो सकती है। ये चार भेद हो गए। अब अपन देखेंगे सम्यक दर्शन के 25 दोष। ये तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक को क्या आचरण करना चाहिए। तो कहा है अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक को 25 दोषों से रहित सम्यक्तों का पालन करने के साथ साथ आठ मूल गुणों का पालन करना चाहिए। वह जैन कुल की मर्यादा के कर्तव्यों का भी श्रद्धा से पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। तीन बातें हो गई। पहले तो सम्यक दर्शन पालन करना चाहिए, उसके साथ में आठ मूल गुणों का पालन तो कंपलसरी करना चाहिए। फिर शेष जैन कुल की मर्यादा को रखने के लिए कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। ये एक्स्ट्रा बात हो गई, अपन देखेंगे आगे आएगा क्या कर्तव्य हैं और पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्तव्य हैं तो क्या हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले सम्यक दर्शन के 25 दोष जो हैं वो इस प्रकार से हैं, बताया है। इसमें पहले स्टेप में तो शंकादि आठ दोषों को त्यागना चाहिए। सम्यक्तों का निर्दोष पालन करने के लिए शंका आदि आठ दोष हैं, उनको त्यागना चाहिए। दूसरे स्टेप में आठ मदों को त्यागना चाहिए। तीसरे स्टेप में छह अनायतन दोष लगने नहीं देना चाहिए अपने व्रतों में। सम्यक्तों के व्रत में छह अनायतन दोष लगने नहीं देना चाहिए। पांचवे चौथे स्टेप में तीन मूर्ता दोषों को लगने नहीं देना चाहिए। बस ये चार बातें हैं। सम्यक दर्शन को कैसे बचाना, सुरक्षित रखना, कैसे निर्दोष रखना, किसकी बात इसमें है। क्या करने से हमारा सम्यक दर्शन रूपी धर्म सुरक्षित, निर्दोष, निर्मल, स्वच्छ रहता है। सम्यक दर्शन निर्मल होना आवश्यक है कि नहीं? बहुत आवश्यक है, क्योंकि चौथा गुणस्थान निरंतर बनाए रखने के लिए सम्यक दर्शन अति निर्मल होना आवश्यक है। तो उसको कैसे निर्मल रखें? तो ये 25 दोष हैं, शंकादि आठ दोष, आठ मद दोष, छह अनायतन दोष और तीन मूर्ता दोष। इस प्रकार ये आठ आठ 16 और छह 22 और तीन 25 हो गए। इन 25 दोषों से बचना चाहिए। इनको एक एक देखते हैं। देखो शंकादि आठ दोष, उसमें से पहला कौन सा है? देखो शंका दोष। शंका का मतलब सर्वज्ञ वाणी में संशय नहीं करना, भगवान की वाणी में संशय बुद्धि नहीं रखना कि भगवान का कहना ठीक है कि महाराज का कहना ठीक है। भगवान का मानू क्या महाराज का मानू, किसको मानोगे? महाराज को भी तो भगवान का मानना पड़ता है, तभी महाराज हैं वो, नहीं तो महाराज ही नहीं है वो। महाराज अपने मन से चले कि भगवान के उपदेश से चले? तो भगवान की वाणी को महाराज को भी मानना पड़ता है और आपको भी मानना पड़ता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाराज का माने कि भगवान का माने। आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान का मुझे मानना है और भगवान का महाराज मान रहे हैं तो उनको भी मानना है, नहीं तो महाराज को भी नहीं मानना है। वही तो परीक्षा तो करना चाहिए। परीक्षा करने के लिए कहा ही है, श्रावक परीक्षा प्रदानी होना चाहिए। श्रावक को परीक्षा प्रदानी रहना चाहिए। क्या परीक्षा करना? भगवान की वाणी के अनुसार कोई चल रहा है क्या नहीं, कोई गुरु, कोई शास्त्र ये भगवान की वाणी के अनुरूप ये लिख रहे हैं क्या नहीं? लिखने वाले दूसरे हो सकते हैं, वाणी के अनुरूप लिख रहे हैं क्या नहीं, शास्त्र बना रहे हैं क्या नहीं? नहीं बना रहे तो उसको नहीं मानना। गुरु नहीं चल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनको नहीं मानना, क्योंकि कुगुरु कौन? हाँ, भगवान की सच्चे वाणी को न मानने वाले ही कुगुरु। जनवाणी पर विश्वास करने वाले गुरु कुगुरु। पहले पासून की परंपरा को दृढ़ करने वाले गुरु कुगुरु, उनको भगवान से कोई लेन देन नहीं, उनको तो पहले पासून अज्ञानी है, गुरु भी अज्ञानी है, पहले पासून की बात को ही दृढ़ कर रहे हैं, तो अज्ञानी है, विचार नहीं कर रहे हैं कि भगवान कितने महत्वपूर्ण वाणी दिए हैं, उससे आत्म कल्याण होने वाला है, ये विचारक ही नहीं है। तो गुरु की कोटि में वो नहीं आते जिनके पास भगवान की वाणी के प्रति समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, विश्वास नहीं, वो गुरु सम्यक दृष्टि नहीं, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो महाव्रत केवल शारीरिक हो गए, कर्म निर्जरा के कारण वो नहीं बन सकते, वो व्रत काम के ही नहीं, थोते व्यर्थ। एक को लिखे बिना जीरो नहीं रखा, ऐसा है वो, व्यर्थ है वो महाव्रत, व्यर्थ है वो तपस्या, व्यर्थ है उनके उपास। तो सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है, पहले भगवान की वाणी को मानो, भगवान ने जैसे आत्म कल्याण के लिए मार्गदर्शन दिया है वैसा ही चलो, ये गुरु का मुख्य कर्तव्य है। और गुरु चल रहे हैं तो चार लोगों का और हित भी हो सकता है, तो गुरु ही नहीं चल रहे हैं तो चार लोगों का क्या हित करेंगे वो, और डुबो देंगे उनको, ये पत्थर के नाव बनेंगे फिर, हैं? खुद भी डूब रहे हैं, चार लोगों को बिठा करके उनको भी ले गए समुद्र के तल में। और पंचम काल में तो गुरु की पात्रता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पात्रता, गुरु का चुनाव जो किया जाता है वह सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि आपका जीवन ही उन पर निर्धारित हो जाता है, धार्मिक जीवन। दिशा दर्शक वही गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, वो कमांडर होता है, कमांडर ही गड़बड़ है तो फिर सेना बहुत बड़ी खड़ी है, मर जाएगी वो। इसलिए गुरु को दिमागी होना जरूरी है, गुरु का आचरण बिगड़ जाए लौट करके आ जाएगा, पर दिशा बिगड़ जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिशा में ले जाना चाहिए भव्य जीवों को, जिस दिशा का उपदेश देना चाहिए वो नहीं दे पाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पूर्व को जाना था और पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और सब तपस्वी हैं, शिष्य भी और गुरु भी, जीरो है सब, कोई फायदा नहीं। इसलिए जिंदगी में एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, एक धर्मात्मा को, समर्पित धर्मात्मा को, अपने जीवन को बनाना चाहता है, मानव कुलाचार को भी बनाना चाहता है और अपने आप को महान भी बनाना चाहता है, धर्मात्मा भी बनाना चाहता है और व्यवहारवान भी, ज्ञानी भी बनाना चाहता है, तो एक गुरु आवश्यक है। और मार्गदर्शन वहीं से लेना चाहिए। लोग आजकल क्या करते हैं, दोनों तरफ पूछ के देखते हैं और फिर खुद ही भ्रांति में पड़ते हैं कि वो सही क्या ये सही, उनका करूं क्या इनका करूं, जमलिंग में आ जाते हैं। हाँ, सच्चे गुरु पर अकाट की श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि उनका उसमें स्वार्थ नहीं रहता, वो उपकारी होते हैं आपको सही दिशा, चलने वाले वो खुद तो चल ही रहे हैं परंतु सही दिशा आपको जो देते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। आप कोल्हापुर जा रहे थे और मालूम नहीं था रास्ता और किसी ने उल्टा बता दिया तो कितनी हानि होगी आपकी, आपकी हानि होती है, रास्ता ठीक से नहीं बताया और भटकते भटकते लौट करके आ गए और उसमें बस इतना पैसा खर्च हुआ, टाइम खराब हो गया, पैसा खराब हो गया। ऐसे सच्चे गुरु नहीं मिलने पर समय खराब होता है, ये भव मानव भव खराब हो जाता है, मनुष्य पर्याय खराब हो जाती है, तकलीफ बहुत होती है। तीर्थंकर जब जन्मे थे, तीर्थंकर एक ही थे क्या? दो थे, चार थे, एक ही थे ना? लोगों ने एक को ही माना कि अनेक को माना? एक को ही माना। जैसे तीर्थंकर एक ही होते हैं, एक को हम मानते हैं, वैसे गुरु भी एक चाहिए कि नहीं? क्या अनेक होने से काम चलेगा? आपके घर का ही विचार कर लो, घर में चाबी एक के पास रहना चाहिए क्या? सब लोगों के हाथ में एक एक रहना चाहिए? विचार करो थोड़ा, सबके हाथ में एक एक चाबी आ जाए तो क्या हो जाएगा? घर चलेगा क्या? जैसे एक समाज के लिए एक ही गुरु होना चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं, एक ही। यानी आपके जीवन के लिए, आपको मार्गदर्शन लेने के लिए एक गुरु को चुनाव कर लो, योग्य गुरु जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, दूसरे का भी भला करते हैं और खुद का भी भला कर रहे हैं, एक को ही चुन लो। मार्गदर्शन एक से ले लो, उपदेश तुम हजार का सुनो, मना नहीं, पर मार्गदर्शन किससे? एक से ही लेना। महाराज ये काम मैं करूं कि नहीं, पूछ पूछ के करना, जहां आप अटकते हैं वहां पूछना, नहीं तो उठते बैठते मैं उठूं क्या नहीं, महाराज बैठूं क्या नहीं, इतना डिपेंड भी नहीं होना, जरा दिमागी भी रहना। हाँ, जहां अटकते हैं वहां पूछना, जहां दिमाग नहीं चल पा रहा है। ऐसे लोग ज्यादा हैं, क्या करें। हमने थोड़ा सा उपदेश, सम्यक्तो का उपदेश दे दिया, कह दिया जो असयमी होता है वो वंदनीय नहीं है, तो फिर पूछने के लिए आते हैं महाराज। फिर तीर्थंकरों के भक्त देवों को भी छोड़ना चाहिए? असंजतम न वंदे का क्या अर्थ है, क्या समझाएं और विचार नहीं किया क्या? असयमी कौन होता है? असयम यानी परिग्रहधारी, जहाँ परिग्रह होता है वहाँ संयम होता है। आप असयम ही है, किस कारण से है? परिग्रह के कारण से। और उनके पास के परिग्रह है क्या? नहीं, देख लो, परिग्रह यदि है तो बस वो वंदनीय स्थान नहीं है। जैसे आप खुद वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, वैसे वो भी पूजनीय वंदनीय नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास भी परिग्रह और आप परिग्रह कॉमन है, दोनों तरफ है। दिमाग भी चलाना चाहिए, सब जगह लगाना चाहिए, लगा के विचार चिंतन भी करना चाहिए। हर बात महाराज से कब तक पूछते रहोगे? हर बात कुछ भी पूछते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लाते हैं यहाँ। नहीं, चिंतन भी करना चाहिए, चिंतन करो, चिंतन करने के बाद भी मगर अगर हल नहीं हो रहा हो तब गुरु के पास जाओ, महाराज ऐसे तू चिंतन हमने बहुत किया, हल नहीं हुआ, इसका कोई प्रश्न उत्तर नहीं निकला, इसलिए आया हूँ और पूछ रहा हूँ। जरा विचार करने के बाद आया करो कि पूछने लायक है कि भी नहीं, इसको कहते हैं विवेक। तो शंका दोष क्या है? सर्वज्ञ वाणी पर संशय नहीं करना। मूल तो अपना धर्म का मार्ग है सर्वज्ञ भगवान की वाणी। मार्ग को कहाँ से खोजना चाहिए? गुरु के माध्यम से खोजोगे क्या? नहीं, सबके लिए शास्त्र ही मेन है। आज पंचम काल में तो शास्त्र ही मेन है, विदाउट शास्त्र कुछ भी नहीं करना, और शास्त्र में जितना लिखा है उतना ही करना, उतना ही करना। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि रावण ने जो कहा था वो भी शास्त्र में लिखा है, रावण ने जो किया था वो लिखा है कि नहीं शास्त्र में? तो शास्त्र में जितना लिखा है उतना ही करना। तो रावण ने जो जो किया था वो भी तो लिखा है, वो भी तो शास्त्रोक्त है, वही करोगे क्या? तो दिमाग भी रखना शास्त्र से क्या करना और क्या नहीं करना है? हाँ नहीं राक्षस था लेकिन शास्त्र में तो लिखा है, तो शास्त्र के आधार से हम बन रहे हैं ना, कुछ बन रहे हैं तो हाँ। वो मानव था या नहीं था वो बात नहीं कह रहे हैं, बात ये समझाई जा रही है शास्त्र में जो जो रहता है वही करना, उतना ही करना, ऐसा हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। तो उतना ही करोगे तो शास्त्र आधार लेकर के चलोगे, विवेक छोड़ करके चलोगे। फिर शास्त्र में ये भी लिखा है सीता ने एक मुनि महाराज के चरण पकड़ के रगड़ के धोए और गंधोदक लिया। जहाँ शास्त्र में जितना गुरु का आदेश है, शास्त्र में जितना लिखा है उतना ही करना, तो मुझे कल के दिन मेरे ऊपर ही उसका प्रयोग करोगे क्योंकि आपने ही कहा है शास्त्र में जितना लिखा जाता है उतना ही करना, तो उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं, सीता ने गलत किया है तो वहाँ पर क्या गलत किया था वो भी लिखा है, रावण ने गलत किया है क्या गलत किया था वो भी लिखा है, रावण ने अच्छा भी किया है तो क्या अच्छा किया था ये भी लिखा है, उसमें क्या ग्रहण करना क्या ग्रहण नहीं करना, शास्त्र में से क्या लेना और क्या नहीं लेना, ये भी तो विवेक होना चाहिए शिष्य के पास, ये विवेक होना चाहिए और विवेक से चलता है। आजकल साधुओं में भी ये विवेक नहीं है, साधुओं में आप पूछेंगे स्त्री के द्वारा अभिषेक क्यों नहीं करना चाहिए, अभिषेक भगवान का अभिषेक, तो शास्त्र देते हैं वो, ये लो जैनागम जैन शास्त्र भगवान की वाणी है, मुनि के चरण क्यों नहीं छूना चाहिए स्त्री को, ये लो छूना चाहिए, ये योग सीता का कथन कथा आती है वर्तमान योग, भगवान की वाणी सर्वज्ञ वाणी, मानते नहीं हो ये, वहां विवेक नहीं है। अभिषेक की भी यही बात है, ये लोग मेरु पर्वत पर गए थे, इंद्र इंद्राणी दोनों ने अभिषेक किया, ये लोग शास्त्र विवेक नहीं है। अब वहां पर जो बालक को लेकर के गए थे किसी ने भी अभिषेक किया हो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बालक उस अवस्था में असयमी थे, वो बालक माँ की गोद में भी बैठ सकता है लेकिन अरहंत बनने के बाद माँ की गोद में नहीं बैठ सकता, ये विवेक नहीं है। अब आधार दे रहे हैं सुमेरु पर्वत का और करवा रहे हैं अरहंत प्रतिमा का, किससे अभिषेक, स्त्री से अभिषेक, विवेक नहीं है, साधु में विवेक नहीं है। अरहंत बालक में और अरहंत प्रतिमा में अंतर ही नहीं समझते हो, समान देख रहे हैं, फिर एक मुनि को और एक बालक को समान देख सकते हैं? हम बालक के समान लगते हैं क्या विवेक नहीं है, कैसे चलना कैसे सोचना कैसे विचार करना, क्या लेना और क्या नहीं लेना शास्त्र से, कैसे उसका विचार करना, विवेक नहीं है। और मुनि ऐसे अनाड़ी हो, साधु ऐसे अनाड़ी हो, विवेकहीन हो, तो चार गृहस्थ भी अनाड़ी उसके साथ मिल जाए तो बस जैन धर्म का कल्याण होने लगता है, धर्म का कल्याण हो जाएगा। अपना अज्ञान ही अपना शिथिलाचार है। सबसे बड़ा सूत्र है ये। हम शिथिलाचारी कहाँ बनते हैं? अज्ञान, ये अज्ञान सबसे बड़ा शिथिलाचार है। अगर ये साधुओं में से और गृहस्थों में से अज्ञान चला गया तो धर्म का उद्धार हो जाएगा। अज्ञान, ज्ञानी बनना आवश्यक है। टाइम हो रहा है। शंका दोष, सर्वज्ञवाणी में संशय, सर्वज्ञवाणी में संशय नहीं करना और संशय करना ये दोष है। उसको कौन सा दोष कहते हैं? शंका दोष। संशय नहीं करना ये गुण है, संशय करना ये दोष है। आप संशय नहीं करते हैं तो आप गुणवान हैं, समर्पित हैं तो गुणवान हैं। आप संशय ही करते रहते हैं तो फिर आप दोषवान हैं। और संशय होता क्यों है? होता इसलिए है कि अपने को विश्वास नहीं है। हाँ नहीं, पहले जो करते आते हैं ना उस पर ज्यादा विश्वास है। और फिर ये जो भगवान की वाणी तो हमेशा नहीं रहेगी, नहीं आपके जिंदगी के लिए भगवान की वाणी नई ही है, नवीन ही है। अनादि से आपने नहीं किया उसको, अब करना है तो वो तो नया ही तो पड़ेगा आपको। पर ब्रह्म क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम इससे ज्यादा कहीं जनवाणी पर विश्वास रखते चले आए हैं ना, वो ठोस श्रद्धा विश्वास उस पर बैठा है, मेंटेलिटी उसके प्रति हो गई है, इसलिए उसको धोने में समय लगता है। और समय नहीं भी लगता, ऐसा भी है, क्योंकि भगवान से बड़े होते हैं क्या ये इतना सोच लिया जाए। हमारी रूढ़िवाद, हमारी पहले की परंपरा भगवान की वाणी से महत्वपूर्ण है क्या, इतना दिमाग में आ जाए विचार तो ऑटोमेटिक एकदम उड़ जाएगा, वो विश्वास उड़ जाएगा। और भगवान की वाणी ऐसी है तो हम ही गलती में थे, हम विश्वास व्यर्थ में करते थे, ऐसा कर करके जग जाता है, वो एकदम जग जाता है। एकदम सम्यक दर्शन होना भी संभव है। लोग कहते हैं महाराज जी तो बहुत दिन से किया हुआ है ना, इसलिए हमारे दिमाग में जरा धीरे 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 जाएगा। वो क्या कपड़ा है तुम धीरे धीरे धो रहे? भगवान की वाणी का महत्व दिख नहीं रहा क्या? भगवान की वाणी ज्यादा है क्या, ये संसार की परंपरा ज्यादा है, कौन सा महत्वपूर्ण है? तो समर्पित हो जाओ ना, एकदम समर्पण, आगे पीछे देखना नहीं। अंजन चोर जैसे, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन परमाणु, काट दिया उन्होंने सभी रस्सियों को और हथियार पर गिर रहे थे, आकर के विद्या ने पकड़ लिया, विद्या सिद्ध हो गई। जहाँ एकदम समर्पण जगता है वहां पर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, एकदम सम्यक दर्शन आ जाएगा। धर्म एक दिन में भी आ सकता है और जमलिंग होता रहेगा तो हजार साल भी लग सकते हैं। जमलिंग को जल्दी मिटाना है कि तत्काल उसको हटाना, ये करना चाहिए। शेष दोषों का कल देखें।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतु मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब तक हम विषयांध रहे।